विद्यारण्य स्वामी विरचित एवं भारती तीर्थ स्वामी परिपूरित पंचदशी ग्रंथ है, जिसका नौवां प्रकरण ध्यान दीप प्रकरण चल रहा है और बहुत सुंदर प्रसंग है। किए हुए स्वाध्याय की आवृत्ति हम लोग कर रहे थे, आप लोग बताएंगे कौन से श्लोक तक आवृत्ति हुई थी। 19 में हो गया, आवृत्ति की बात बोल रहा हूं, वो तो कम्प्लीट 23 हुआ जो तो पहले हुआ, मैं आवृत्ति शब्द बोल रहा हूं। मैंने तो 17 तक की आवृत्ति की थी, आप थोड़े घर जाकर के की होंगी, मेरे यहां तक हुई थी। देखो प्रसंग यह चल रहा था, पहले संवादी ब्रह्म और विसंवादी ब्रह्म करके आया। संवादी ब्रह्म भले ही ब्रह्म है लेकिन अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है, जिसको हम चाहते हैं उस ब्रह्म से उसकी प्राप्ति हो जाती है। फिर प्रसंग आया है परोक्ष ज्ञान का, कि जिसको हम परोक्ष ज्ञान बोलते हैं वहां भी तो उस ब्रह्म का साक्षात्कार तो है नहीं। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा, ये सुना ही तो है, पढ़ा ही तो है शास्त्र में कि ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, देश काल आदि में उसका अंत नहीं होता है, यही तो जाना है। अब देखो जैसे वो मणि प्रकाश था, वहां पर मणि नहीं दिखाई पड़ रही थी, केवल प्रकाश से वहां तक गए हैं, तो प्रकाश तो ब्रह्म ही था। हो सकता है उस मणि के बजाय दीपक मिल जाए आगे, तो वो तो ब्रह्म ही है। तो जिस प्रकार से प्रकाश से हमने मणि की कल्पना किया, इसी प्रकार से परोक्ष ज्ञान में भी तो शास्त्र से सुन करके ही तो जाना है कि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा। चलो अच्छी बात है कि यदि ये संवादी ब्रह्म हो तो मिल जा, विसंवादी ब्रह्म हो तो ब्रह्म मिलेगा कहीं। कहा नहीं नहीं, ये विसंवादी ब्रह्म नहीं हो सकता, श्रुति ने कहा है कि ये सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है। तो बोले सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है, शास्त्र ने कहा और हमने माना, पर जब तक उसको पाया नहीं है तब तक तो भ्रम ही तो कहा जाएगा, संवादी भ्रम की तरह भ्रम ही तो कहा जाएगा। तब यहां पर कहा कि उसको भ्रम नहीं कह सकते, भ्रम नहीं कह सकते। यदि कोई व्यक्ति दोनों प्रकाश को देख करके ही ये जानना चाहे कि ये प्रकाश मणि का है कि दीप का है, और कोई विज्ञ पुरुष वहां पर बैठा हुआ हो और वो स्पष्ट कर दें कि इस खिड़की का जो प्रकाश है वो दीप का प्रकाश है और इस खिड़की में जो प्रकाश दिख रहा है वो मणि का प्रकाश है, तब तो फिर उसको निश्चय हो जाता है ना कि ये मणि का और ये दीपक का है, बोले हो जाता है। अब वहां पर फिर भ्रम कहां रह गया, वहां तो ज्ञान हो गया कि इस खिड़की वाला प्रकाश मणि का प्रकाश है, इसका दीपक का प्रकाश है, बताने वाला मिल गया। तो बोले हां ठीक है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जो परोक्ष ज्ञान है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म का जो बोध है, ज्ञान है, ये केवल भ्रम नहीं है, इसको बताने वाला है, इसलिए उसको ज्ञान कहना पड़ेगा, उसको भ्रम नहीं कह सकते। किसने बताया, तो काश्रुति ने बताया है, कल उस पर चर्चा हो रही थी। इसलिए परोक्ष ज्ञान ही है, और जिसको परोक्ष ज्ञान है उसको अतत्ववेत्ता नहीं कह सकते, 17वें श्लोक में यही बात आई थी। परोक्षत्वापराधेन भवेद न अतत्ववेदनम प्रमाणेन एव शास्त्रेण सत्वमूर्ति विभाषनात्। कहते हैं अपरोक्ष अपराध मात्र से उसको अतत्व वेदन नहीं कहा जा सकता कि तत्व का ज्ञान नहीं है। अरे प्रमाण के द्वारा, शास्त्र प्रमाण से उसने जाना है कि ब्रह्म सत्यम ज्ञान अनंत है, सच्चित आनंद रूप से ब्रह्म को जान लिया है, इसलिए उसको अज्ञानी नहीं कह सकते, वहां ब्रह्म भी नहीं कहा जा सकता। जिस स्वत्व मूर्ति विभाषनात्, भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो चतुर्भुज है, ये शास्त्र से तो जानकर के हमको ज्ञान होता है ना, वहां भ्रम थोड़े ही होता है, शास्त्र ने जना दिया, इसलिए बताने वाला दूसरा होता तो फिर उसको भ्रम नहीं कह सकते, वो ज्ञान है। ठीक है, उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है तो ज्ञान है, परंतु वो परोक्ष ज्ञान है, उसको अपरोक्ष नहीं कह सकते। पर परोक्ष ज्ञान वाला भी अज्ञानी नहीं होगा, वो भी ज्ञानी है, परोक्ष ज्ञानी है, उसको भ्रम ही नहीं बोलना चाहिए कि वो भी भ्रमित है, मानव हुई मानी हुई बात है, ऐसा नहीं है। सच्चिदानंद व्यक्ति उल्लेखिनो ब्रह्म तत्व ज्ञान से शास्त्र जन्यस्यापि कुतः प्रोक्षता अति आशंक्य। फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ है, आशंका खड़ी की गई है, ये मंथन है भाई, दोनों तरफ से मंथन चलेगा, एक तरफ पूर्व पक्ष की ओर से खींचा जाएगा और एक सिद्धांत ओर की ओर से खींचा जाएगा, ये तो समुद्र मंथन है, तभी तो अमृत निकलेगा। कहा कि आपने इसको परोक्ष को ज्ञान मान लिया है, तो परोक्ष ज्ञान होने के बाद में फिर तो कोई जानने की जरूरत ही नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान की कहां आवश्यकता है, ज्ञान हो गया बस। यदि आप इसको परोक्ष को भ्रम नहीं मानते हो, संवादी भ्रम भी नहीं माना, आपने इसको परोक्ष ज्ञान माना, और जिसको परोक्ष ज्ञान हुआ वो ज्ञानी हो गया, परोक्ष ज्ञानी है, तो ऐसी स्थिति में सच्चिदानंद व्यक्ति उल्लेखिनो ब्रह्म तत्व ज्ञान से, जो ब्रह्म तत्व ज्ञान है सच्चिदानंद स्वरूप का उल्लेखन करने वाला, वो जो ज्ञान वाला पुरुष है, शास्त्र जन्यस्यापि, ये सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, ये ज्ञान कैसे हुआ, बोले शास्त्र जन्य, शास्त्र ने बताया है, तो जब शास्त्र ने बता दिया, आपने जान लिया, तब फिर उसमें परोक्षता कैसी रह गई। ब्रह्म सतचित आनंद स्वरूप है आपने जाना, बोले हां, कैसे जाना, शास्त्र से जाना, तो जान तो लिया, फिर उसको परोक्ष क्यों कहेंगे आप। तब यहां पर उस शंका का प्रश्न समाधान करते हैं कि शास्त्र से सतचित आनंद रूप में ब्रह्म को जानने पर भी परोक्षता है, अपरोक्षता नहीं हुई है। अपरोक्षत्व प्रयोजक प्रत्येक उल्लेखा भावादिति आह। बात यह है कि परोक्ष ज्ञान होने से ये बोध नहीं हो जाता है कि वो प्रत्येक आत्मा साक्षी आत्मा मैं हूं, ये बोध तो महावाक्य चिंतन के बिना संभव नहीं है, ये कतई संभव नहीं है। परोक्ष ज्ञान से तो ये समझ लो कि महावाक्य जो होता तत्वमसि, उसमें केवल तत्पद का ही शोधन है, परोक्ष ज्ञान में मात्र तत्पद का शोधन है। शास्त्र ने उसे तत् के लक्षण बताए हैं कि वो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन त्वम पद का शोधन कहां हुआ। अपरोक्ष ज्ञान में त्वम पद का भी शोधन है, इसलिए परोक्ष में तत् का शोधन हो रहा है और अपरोक्ष में त्वम पदार्थ का भी शोधन हो रहा है। तब जाकर के जब अपरोक्ष में त्वम पदार्थ का शोधन हुआ तो पता चला कि जिसको मैं तत् समझ रहा था तुम भी वही है, जिसको वह समझ रहा था मैं भी वही हूं, अथवा वह भी मैं ही हूं, ये अपनी मर्जी है, मैं को उसमें मिला दो या उसको मेरे में मिला दो, ये अपने सामर्थ्य के ऊपर है। समुद्र में घड़े का पानी मिला दो, और चाहे घड़े में समुद्र को अगस्त्य मुनि ने मिला दिया महाराज पी गए, तो अपने सामर्थ्य के ऊपर है, चाहे समुद्र को घड़े के पानी में मिलाओ, चाहे घड़े के पानी को समुद्र में मिलाओ, लेकिन जब तक तुम पदार्थ का शोधन नहीं होगा तत्पदार्थ के साथ में एक्य कैसे संभव है। इसलिए अप्रोक्ष ज्ञान में ही त्वम पदार्थ का वास्तविक शोधन है। अप्रोक्षत्व प्रयोजक प्रयोजक प्रत्यकत्व उल्लिखा भावाद। देखो उस प्रोक्ष ज्ञान में अप्रोक्ष प्रयोजकत्व प्रयोजक अप्रोक्ष का जो प्रयोजक है वो क्या है त्व प्रत्यकत्व जो साक्षी आत्मा है उसको मैं रूप से अनुभव करवाना ये प्रोक्ष ज्ञान में संभव नहीं है। उसका उल्लेख नहीं है उसका अभाव है। इसलिए प्रोक्ष ठीक है ज्ञान है लेकिन प्रोक्ष ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान नहीं है। प्रोक्ष ज्ञान ही अंतिम ज्ञान नहीं है। प्रोक्ष ज्ञान के बाद भी अप्रोक्ष ज्ञान की जरूरत है। तत्पदार्थ शोधन के अनंतर भी त्वम पदार्थ शोधन की जरूरत है तभी जाकर के दोनों का ऐक्य संभव होगा। वो बात देखो बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं यहां पर। सच्चिदानंद रूपस्य शास्त्राद भानेप्यनुलिखन प्रत्यंचम साक्षिणम तत्तु ब्रह्म साक्षात न वीक्षते। जो आप सुन रहे थे वही है यहां पर। सच्चिदानंद रूपस्य शास्त्राद भानेपि प्रोक्ष ज्ञान में ऊपर से लगा लो। प्रोक्ष ज्ञान में सच्चिदानंद रूप का शास्त्र से भान होता है। ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है ये शास्त्र से ही तो भान शास्त्र से तो ज्ञान हो रहा है कि सच्चित आनंद स्वरूप है। शास्त्राद भानेपि अनुलेखन प्रत्यंचम साक्षिणम परंतु फिर भी वो जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो प्रत्येक आत्मा वो साक्षी है ये तो उसको अनुभव नहीं हो रहा है। ये ज्ञान तो अभी नहीं हो रहा है। तत्तु ब्रह्म साक्षात न वीक्षते वो तो जो अप्रोक्ष ज्ञान है तभी संभव होगा नहीं तो ब्रह्म साक्षात आत्मा है इस रूप से तो देख नहीं रहा है जान नहीं रहा है। परोक्ष कह करके तो उसको ज्ञान हुआ है। इसलिए परोक्ष ज्ञान के पहली बात तो यह हुई कि परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है। परोक्ष ज्ञान ज्ञान है और परोक्ष ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता ये भी नहीं है। परोक्ष ज्ञान के बाद भी अपरोक्ष ज्ञान की अपेक्षा है क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान हुए बिना सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसका आत्मा रूप से अनुभव संभव नहीं है। अपरोक्ष में ही तो आत्मा रूप से उसका अनुभव होगा। कथम तरही तथाविद ब्रह्म गोचरस्य ज्ञानस्य तत्व ज्ञानत्वमिति आशंक्य आगम प्रमाण जन्यत्वाद इति आह। कथम तरही तथाविद ब्रह्म गोचरस्य ज्ञानस्य तत्व ज्ञानत्वमिति आशंक्य। कहते हैं कि जब परोक्ष ज्ञान के बिना भी अपरोक्ष ज्ञान की जरूरत है परोक्ष ज्ञान से पूर्णता नहीं है तो ऐसी स्थिति में जब वो परोक्ष ज्ञान तथा विद गोचरस्य ज्ञानस्य ज्ञान के लिए अपरोक्ष ज्ञान की ही जरूरत है तो तत्व ज्ञानत्वम इति आशंक्य। उस प्रकार के तत्व ज्ञान की जो आशंका उत्पन्न हो रही है कि किस प्रकार से परोक्ष ज्ञान के बाद में अपरोक्ष ज्ञान की अपेक्षा होती है तो कहते हैं आगम प्रमाण जन्यत्वात् तथा विद ब्रह्म गोचरस्य ज्ञानस्य तत्व ज्ञानत्वम इति में आशंक्य। तो जो परोक्ष ज्ञान प्रश्न दूसरा जो परोक्ष ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान के बाद भी अपरोक्ष ज्ञान की अपेक्षा यदि रह जाती है तो फिर परोक्ष को आप ज्ञान क्यों बोलते हो। परोक्ष ज्ञान के बाद भी अपरोक्ष ज्ञान की यदि अपेक्षा है जरूरत है तो परोक्ष को ही ज्ञान क्यों बोलते हैं। परोक्ष ज्ञान है इसको ऐसा क्यों बोलते हैं। तथाविद ब्रह्म गोचरस्य ज्ञानस्य तत्व ज्ञानस्य ऐसा ही है और फिर उस प्रकार से अप्रोक्ष ज्ञान की जरूरत है तो उसको ज्ञान क्यों मानते हैं, तो उसका उत्तर देते हैं कि आगम प्रमाण जन्यत्वात्, परोक्ष ज्ञान है ये आगम प्रमाण से जन्य है, इसलिए परोक्ष को भी ज्ञान बोलते हैं, उसको भ्रम नहीं कहा जाता, संवादी भ्रम नहीं कहा जाएगा, वो ज्ञान है। शास्त्रोक्तेनेव मार्गेण सच्चिदानंद निश्चयात परोक्षम अपि तत्वज्ञानम, तत्वज्ञानम न तो भ्रम। शास्त्रोक्तेनेव मार्गेण सच्चिदानंद निश्चयात, वो परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है, ये निश्चय जो हो रहा है वो शास्त्रेण नेव मार्गेण, शास्त्र के मार्ग से ही हुआ, अर्थात शास्त्र के द्वारा, शास्त्र के बिना सच्चित आनंद स्वरूप है ये निश्चय भी नहीं होता। तो सच्चित आनंद स्वरूप का निश्चय शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए परोक्षम अपि तज ज्ञानम, शास्त्र से जाना गया है इसलिए परोक्ष भी वो ज्ञान ही है, उसको भ्रम नहीं कह सकते, शास्त्र से जाना है ना। पहले बताया था कि वो जो प्रकाश है यदि किसी के माध्यम से नहीं जाना तो वह भ्रम हो सकता है, पर स्पष्ट किसी ने बता दिया कि ये मणि का प्रकाश है और ये दीप का प्रकाश है, अब उसको भ्रम नहीं कह सकते, वो तो ज्ञान हो गया। एक हाथ में अमृत है और एक हाथ में विष है, दोनों हाथों में दे दिया जाए, अब व्यक्ति अमृत को विष समझ करके पी ले या समझो कि विष को अमृत समझ के पी ले तो परिणाम तो विपरीत ही होगा। पर एक व्यक्ति वहां भ्रम हो जाता है, कभी किसको बहुत बार घर में पड़ी हुई वस्तु में भ्रम हो जाता है, आंख की दवाई को मुंह में पी लिया और मुंह की दवाई को आंख में डालने लग जाए, पेट की जो दवाई है जिसमें काली मिर्च आदि पड़ी हुई हो और उसको यदि आप आंख की दवा समझ करके डाल लेंगे तो उल्टा काम होगा कि नहीं, वह भ्रम हो गया। परंतु कोई व्यक्ति बता दिया कि ये जो शीशी है इसको थोड़ा पीना, पेट के सारे कृमि कीट नष्ट हो जाएंगे, काली मिर्च आदि इसमें मिले हुए हैं और ये दवाई आप एक बूंद बूंद करके आंख में डालिए, आपका जो मोतियाबिंद है वो समाप्त हो जाएगा। अब जानने के बाद अब आप उसका सेवन करते हैं तो वहां पर भ्रम नहीं है, वहां ज्ञान है कि ये आंख की दवा है और ये पेट की दवा है, वहां भ्रम नहीं हो सकता है। इस प्रकार से शास्त्र ने यहां पर जब बताया है परोक्षम अपि तज ज्ञानम, ये जो परोक्ष है क्योंकि शास्त्र के द्वारा निश्चय कराया गया है सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा है, ये शास्त्र से निश्चय होने के कारण तत् ज्ञानम, वो ज्ञान है परोक्ष, तत्व ज्ञानम, और वो ज्ञान कौन सा है, ब्रह्म का ही ज्ञान है, वो तत्व का ही ज्ञान है, उसको भ्रम नहीं कह सकते कि परोक्ष ज्ञान एक ब्रह्म है। ये किसके लिए है, जो नास्तिक लोग ये बोलते हैं कि तुम कहते हो परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, देखा है तुमने कभी परमात्मा, देखा है, बोले नहीं देखा है, तो नहीं देखा तो ये तो तुम्हारा होवा है, एक मान्यता मात्र है, एक भ्रम है, बोले भ्रम नहीं हो सकता है क्योंकि शास्त्र के द्वारा निश्चय कराया गया है कि परमात्मा है, और शास्त्र जो बोलता है वो अज्ञात वस्तु का ज्ञापक ही शास्त्र होता है, शास्त्र का काम ही है, सिद्ध को सिद्ध करना शास्त्र का काम नहीं है, जो असिद्ध है जो अज्ञात है उसको सिद्ध करना शास्त्र का काम है, इसलिए शास्त्र ने बताया है तब उसको भ्रम नहीं कह सकते। तत्व ज्ञानम न तो भ्रम, वो जो ज्ञान है परोक्ष ज्ञान है वो तत्व ज्ञान है, वो भ्रम नहीं है। ननु सत्य ज्ञानादि वाक्यै ब्रह्मणः सच्चिदानंद रूपत्वमिव तत्त्वमस्यादि वाक्यै प्रत्येक रूपत्वमपि तस्य बोध्यतः एव, अतः शास्त्र जन्यस्यापि ज्ञानस्य प्रत्येक व्यक्तुलेखित्वाद् अप्रोक्षम एव इति आशंक्य आह। कते सत्य ज्ञानादि वाक्यै ब्रह्मणः सच्चिदानंद रूपत्वम इति तत्वमस्यादि वाक्य। अच्छा कहते हैं कि जो सत्य ज्ञानादि वाक्य ही सत्यम ज्ञानम तम ब्रह्म जो वाक्य है, इस वाक्य के द्वारा और भी बहुत सारे इस प्रकार के वाक्य हैं, ब्रह्म बोधक ब्रह्म के लक्षण, सदैव स्वमेदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम्, ये सारे जो ब्रह्म बोधक वाक्य हैं इनके द्वारा ब्रह्मण सच्चिदानंद रूपत्वम, ब्रह्म के सच्चित आनंद स्वरूप का ही उल्लेख हुआ है, बताया गया है। उधर तत्वमस्यादि वाक्य ही प्रत्येक रूपत्वम अपि तस्य बोध्यत एव। और जो तत्वमस्यादि वाक्य हैं, दो प्रकार के वाक्य हो गए, एक वाक्य हो गए अवांतर वाक्य, एक हो गए महावाक्य। जो सत्य ज्ञानादि, ये जो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है, ये अवांतर वाक्य है, ये केवल ब्रह्म है, ब्रह्म ऐसा है उसके लक्षण बताने वाले वाक्य हैं। जो अवांतर वाक्य होते हैं वो ब्रह्म की पहचान बताने वाले हैं, तो उन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है। दूसरा कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है ये जाना गया। उधर जो महावाक्य है तत्वमस्यादि वाक्य, तत्वमस्यादि वाक्य प्रत्येक रूपत्वम अपि तस्य बोध्यत एव, ये बात स्पष्ट हो गई कि जो अंतर आत्मा है वो, ये अंतर आत्मा का जो बोध है वो महावाक्यों के द्वारा ही होगा। अवांतर वाक्य जो होंगे वो ब्रह्म का ही लक्षण कराएंगे, ब्रह्म को ही बताएंगे, और महावाक्य इस बात को बताते हैं कि जिसको अवांतर वाक्यों से परोक्ष रूप से तुमने जाना है कि ब्रह्म है ब्रह्म है, उसको महावाक्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जानोगे, साक्षी रूप से जानोगे, आत्मा के रूप में जानोगे, इसको जानना ही है, उसके द्वारा ही बोधन किया जाता है। अत शास्त्र जन्यस्यापि ज्ञानस्य प्रत्येक व्यक्तु लेखित्वाद अप्रोक्षम एव इति आशंक्या। इस प्रकार से शास्त्र जन्य जो ज्ञान है वो प्रत्येक व्यक्तु लेखित्वात, जो अंतरात्मा है साक्षी चैतन्य है उसका उल्लेखन करने वाला होने से अप्रोक्षम एव, वो अप्रोक्ष ही है। ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यकत्वेन एव वर्णितम् महावाक्यै तथापि एतद् दुर्बोधम् अविचारिणः। क्योंकि जब इस प्रकार से महावाक्यों के द्वारा उस प्रत्येक आत्मा का अप्रोक्षत्व तो हो ही जाता है, जिसने अवांतर वाक्यों के बाद में महावाक्यों का अध्ययन किया है, तो वो परमात्मा हमारी अंतरात्मा है, वो साक्षी हमारा स्वरूप है, ये ज्ञान तो हो ही जाता है ना, फिर सभी को हो जाता है। तब उसमें कहते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी को हो जाए, महावाक्य पढ़ने मात्र से ही सबको ये ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं है। ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यकत्वेन एव वर्णितम् महावाक्य ही, यद्यपि वेदांत शास्त्रों में महावाक्यों के द्वारा, अन्वय को ऐसा लगाओ, ब्रह्म यद्यपि ब्रह्म शास्त्रेषु महावाक्य ही प्रत्येकत्वेन एव वर्णितम्, इस प्रकार का अन्वय लगाना, इसको शब्दों को जोड़ने की बात बता रहा हूं। यद्यपि ब्रह्म शास्त्रेषु महावाक्य ही प्रत्येकत्वेन एव वर्णितम्, यद्यपि वेदांत शास्त्रों में ब्रह्म महावाक्यों के द्वारा साक्षी के रूप में ही वर्णित किया गया है, वेदांत शास्त्रों में फिर महावाक्य शब्द दिया है, क्योंकि उपनिषद मात्र वेदांत है, पर ये जो अवांतर वाक्य आते हैं ब्रह्म के वो किसमें लिखे गए हैं, वो भी उपनिषद में ही तो है, वेदांत में ही तो है अवांतर वाक्य, लेकिन अवांतर वाक्य वो साक्षी रूप आत्मा है ये सिद्ध नहीं करता है, वो ब्रह्म का लक्षण बता रहा है, इसलिए महावाक्य शब्द जोड़ा यहां पर आचार्य ने श्लोक में, कि वेदांत शास्त्रों में महावाक्य ही महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म तत्व साक्षी के रूप में ही वर्णित किया गया है, अंतरात्मा के रूप में ही उसका वर्णन हुआ है। तथापि एतद दुर्बोधम, शास्त्र ने तो वर्णन कर दिया परंतु फिर भी ऐसा बोध होना कठिन है कि वो जो सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है वही साक्षी है, वो अंतरात्मा है, वो मैं हूं, ऐसा बोध होना आसान काम नहीं है, दुर्बोध है, बड़ा कठिनता से बोध होता है। अच्छा क्यों, किसको? अविचारिणा है, जब तक परंपरा से कर्म उपासना आदि के द्वारा चित्त की शुद्धि न की गई, दूसरा अंतरंग साधन श्रवण मनन निदिध्यासन परंपरा से नहीं किया गया है, तो अविचारिण है, जिसने विचार नहीं किया गया है उसके लिए ये महावाक्यों के द्वारा स्पष्ट कहा हुआ होने पर भी उसका बोध नहीं होता है। क्यों? अरे हमारा जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसमें और जो शास्त्र बता रहा उसमें बिल्कुल पूर्व पश्चिम का अंतर मालूम पड़ेगा। जो ब्रह्म के लक्षण है अवांतर वाक्यों में जो जाने गए हैं, सच्चित आनंद रूप से ब्रह्म को जो जाना गया है, महावाक्यों के द्वारा साक्षी रूप में निश्चित रूप बताया गया है कि यह तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप है, सच्चित आनंद तुम स्वयं हो, ये बात सब नहीं जान पाएंगे जब तक कि उसको परंपरा से अधिकारिता पूर्वक उसका चिंतन न हो। वो भजन गाते थे एक बार, वो पहले कोई महात्मा थे, बहुत अच्छा भजन, इच्छा थी यहां भी कभी आए हो, अंबरनाथ है ना आपके इधर, वो थाने साइड में कहीं, स्वरूपानंद जी महाराज हुआ करते थे, एक पावलोवा में स्वाध्याय के लिए आते थे, उनको बड़ी डायबिटीज थी, वो शायद सुना कि 400 के आसपास रहती थी, और यदि कहीं वो गुजराती दूध का क्या बनाते हैं, वो दूध पाक है, वासुंदी, वासुंदी वो जो मिल गई तो बाबा जी 4-5 कटोरी तो ऐसे घटक जाते थे, वो हमारी आंखों के सामने की बात। तो किसी ने कहा कि महाराज आप इतने शक्कर पी जाते हो, बोले शरीर तो ऐसे भी रहने वाला नहीं है, फिर पी करके जाए ना, नहीं तो वासना बाकी रह जाएगी, ये तो खत्म हो जाए। शायद वो थे एक महात्मा थे राज राजेश्वर आनंद जी महाराज अहमदाबाद के, वो कंभात में सम्मेलन में आया करते थे, बड़ा अच्छे भजन गाते थे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने, रूप तो सबका वही है पर जानने वाले कोई कोई होते हैं, सबको ये बोध नहीं होता है। इसलिए बात तो सत्य है, शास्त्र ने सही कहा है, परंतु दुर्बोधम अविचारिणा है, विचार न करो तो उसके लिए तो बाबा वो बड़ा दुर्बोध है, बड़ा कठिन है। सम्यक ज्ञानस्य प्रमाण वस्तु परतंत्रत्वात् प्रमाणस्य च तत्त्वमस्यादि वाक्य रूपस्य सद्भावाद् वस्तुनः च ब्रह्मात्मैक्य लक्षणस्य विद्यमानत्वात् कुतो विचारम् अन्तरेण दुर्बोधमिति आशंक्य। बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया है, एक आशंका उठाई है, मंथन है, कहा कि देखो सम्यक ज्ञानस्य प्रमाण वस्तु परतंत्रत्वात्, जो यथार्थ ज्ञान है सम्यक ज्ञान, वो ज्ञान स्वतंत्र नहीं होता है। तो कहते प्रमाण वस्तु परतंत्रत्वात्, यथार्थ ज्ञान के लिए वो प्रमाण की जरूरत होती है। कोर्ट में भी किसी व्यक्ति को जज जजमेंट देता है तो प्रमाण के आधार पर ही देता है, किसी को बरी करता है तो प्रमाण के आधार पर ही करता है। तो सम्यक ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाण की तो जरूरत पड़ती है, इसलिए सम्यक ज्ञान प्रमाण परतंत्र होता है, प्रमाण के ही अधीन होता है, प्रमाण से सिद्ध करो तब वो सम्यक यथार्थ ज्ञान होगा। और प्रमाणस्य च तत्वमस्यादि वाक्य रूपस्य सद्भावार्थ। अब यहां पर आप देखें, ये तो एक न्याय हो गया कि यथार्थ ज्ञान प्रमाण परतंत्र होता है, ये बात मान ली। अब यहां का जो प्रसंग चल रहा है हमारा, इस प्रसंग में जो ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, उस ज्ञान में प्रमाण कौन है? वेद शास्त्र प्रमाण है ही है, विद्यमान है। प्रमाणस्य चेतत्वमस्यादि वाक्य रूपस्य, और वो सच्चित आनंद स्वरूप हमारी आत्मा है, प्रत्येक आत्मा है। ये प्रत्येक आत्मा रूप से सिद्ध करने के लिए भी वेद का जो महावाक्य है वो प्रमाण है, उपलब्ध ही है, सबके सामने है, स्वतंत्र है। कोई भी उठाओ महाराज पढ़ लो, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, आराम से पढ़ो ना, प्रज्ञानम ब्रह्म कौन मना करता है। तो ये जो महावाक्य प्रमाण है ये भी प्राप्त है, इसका सद्भाव है, ये मिला हुआ है। और वस्तुन से ब्रह्मात्मक के लक्षण से विद्यमानत्वात्, जिसको प्रमाण से सिद्ध किया जाता है, वो वस्तु जो प्रमाण के बिना सिद्ध नहीं होती, वो भी यहां पर विद्यमान है। यहां हमारे प्रसंग में प्रमाण से किसको सिद्ध कर रहे हैं? ब्रह्म तत्व को, कि ब्रह्म आत्मा है, तो ब्रह्म भी विद्यमान ही है। उपनिषद के महावाक्य भी विद्यमान है जो प्रमाणित करने वाले हैं, और जिस ब्रह्म तत्व को प्रमाणित किया जाता है कि तुम्हारी आत्मा है, वो भी विद्यमान ही है, दोनों में एक का भी अभाव नहीं है। शास्त्र भी है और शास्त्र से प्रमाणित वो ब्रह्म तत्व भी विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में कुतो विचारम अंतरेण दुर्बोधम, कहते हैं विचार के बिना ये ब्रह्म तत्व दुर्बोध है, ये दुर्बोध कैसे हो गया जी? समझ में आई बात? ऊपर वाले श्लोक में कहा कि है सब कुछ है, दुर्बोधम अविचारी न, विचार के बिना तो दुर्बोध है। बोले विचार के बिना दुर्बोध कैसे हो गया? उसको प्रमाणित करने वाला जो शास्त्र है, शास्त्र का महावाक्य है, वो सारा हमारे सामने सद्भाव है, उसका विद्यमान है। और जिसको प्रमाणित करना है वो ब्रह्म विद्यमान है, वो आत्मा विद्यमान है। अब इसके लिए और अन्य विचार की आवश्यकता कहां पड़ गई? उसको दुर्बोध कैसे कहते हो? उसको सुबोध कहना चाहिए। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, कोई कठिन नहीं है, ऐसा क्यों नहीं बोल देते? तब कहते हैं हाँ बोल देना चाहिए, लेकिन समस्या और है। सब कुछ उपलब्ध है लेकिन वहां हमारी दृष्टि नहीं है। वहां दृष्टि है नहीं, और है तो टिकती नहीं है, टिकती और फिर हट जाती है, टिकती तो फिर हट जाती है, इसलिए दुर्बोध है। कठिन तो यही है, देहाद्यात्म तत्व विभ्रांतो जागृत्याम न हटात पुमान ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुम क्षमते मंदधीत्वतः। यही कारण है बस। देहादि आत्म तत्व विभ्रांतो जागृत्याम पुमान न हटात ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुम क्षमते मंदधीत्वतः। बात यह है कि यदि कुशाग्र बुद्धि हो तब तो बात बन जाएगी। जो आपने कहा प्रमाण उपलब्ध है और प्रमाणित की जाने वाली जो प्रमेय वस्तु है ब्रह्म है, वो उपस्थित है, इसलिए उस पुरुष के लिए तो कोई ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। महाराज श्री जी एक घटना सुनाया करते थे, त्यागमूर्ति जी महाराज गुरुदेव, दक्षिण भारत में कोई एक बहुत अच्छे वेदांत के कोई विद्वान थे। उनके पास में एक देहाती खेडूत व्यक्ति, कभी कभी जब अवसर मिलता तो उनके पास में जाता और उनको निवेदन करता कि महाराज जो हमारे संपूर्ण शास्त्रों का अंतिम निर्णय है, निचोड़ है, सार है, वो ज्ञान आप मुझे दीजिए, इधर उधर उलझाना मत, जो शास्त्रों का अंतिम निचोड़ है, सार है, वो ज्ञान दीजिए। अब वो विद्वान व्यक्ति ये सोचने लगे कि जिस सार तत्वों को पाने के लिए मुझे जीवन खपाना पड़ा, और ये खेडूत व्यक्ति गांव का रहने वाला जिसको जानने के लिए हमें वर्षों तक तो संस्कृत भाषा का अभ्यास करना पड़ा, और इसको संस्कृत भाषा का आदि अंत भी मालूम नहीं है, ये कैसे समझ पाएगा। तो वो विद्वान व्यक्ति उस व्यक्ति को इधर उधर का साधन कुछ बता करके, भाई सारे शास्त्रों का सार है भगवान नाम जप करो, सब शास्त्र एक स्वर में कहते हैं कि कलयुग में इससे बढ़कर के कोई साधन नहीं, ऐसे कर आदि करके अन्य अन्य साधनों में उसको लगा देवे और भेज देवे, पर उस व्यक्ति को संतोष न हो। उसको अंदर से लगता था कि अभी कोई बात बाकी है, ये सही सही बात बता नहीं रहे। और कभी कभी ऐसा होता भी है, कई लोगों को सही सही बात यदि एकाएक हठात बता दी जाए तो सोचते हैं कि नहीं नहीं ये महाराज अंदर में छुपा करके बोल रहे, कोई खास बात तो अपने खास होंगे उन्हीं को बताएंगे, नहीं तो सबको थोड़े बताते होंगे। विश्वास नहीं हुआ उसको, अंतर आत्मा उसको स्वीकार नहीं कर रही थी कि ये जो उत्तर दिया वो सही है। एक रोज वो विद्वान पंडित किसी सरिता में स्नान कर रहे थे नदी पर, वस्त्र बाहर उतार रखे, ठंडी का समय था, एक कोपिन धारण करके वो स्नान कर रहे थे। खेडूत व्यक्ति वहीं पहुंच गया, उसने भी कपड़े उतारे और वहीं जाकर के पंडित जी के पैर पकड़ लिए। महाराज अब शास्त्र का जो बिल्कुल सार तत्व है वो आप मुझे बताइए, जब तक वो अंतिम निर्णय आप मुझे नहीं देंगे इस जल में मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, ठंडी में आप भी मरोगे मैं भी छोड़ूंगा नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। अब तक जो आपने बताया उससे मुझे संतोष नहीं हुआ, पैर ही पकड़ लिए छोड़े ही नहीं, तो आखिर व्यक्ति को हार माननी पड़ती है। तब कहते हैं कि उसने विद्वान ने उस खेडूत व्यक्ति को महावाक्य श्रवण करवाया, तत्वमसी महावाक्य का उपदेश दिया। तो गुरुजी सुनाया करते थे कि जो ही उसने इस महावाक्य को श्रवण किया वो समाहित हो गया, समाहित हो चुका है। क्यों? कर्तोपास्ति था, जो उपासना करनी थी जो साधन करना था वो कर चुका था, एकमात्र जो आवरण था उसकी निवृत्ति हो गई। लेकिन उच्च कोटि के साधक के लिए तो उतना भी पर्याप्त है, परंतु जब उस स्थिति पर नहीं पहुंचा है तो उनके लिए तो इन सबकी जरूरत है ही है। तो ये जो कहा गया है कि भाई महावाक्य प्रमाण भी उपस्थित है और सत्य वस्तु परमात्मा भी उपस्थित है, और महावाक्यों के द्वारा जब उसका उपदेश किया ही जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि वो तत्व का जो बोध है दुर्बोध है, बड़ा कठिन है, ये इसमें कठिनता क्या है फिर? तब कहते कठिनता यही है, देहादि आत्मत्व विभ्रांतो जागृत्याम, व्यक्ति भ्रम में जाग रहा है। शब्द बड़े विलक्षण है, एक ओर भ्रम है और दूसरी ओर जागरण है, और जो भ्रम में जाग रहा हो उसको हकीकत में जगाना बहुत कठिन काम है, ये बात बिल्कुल पक्की है। जो भ्रम में जाग रहा हो माने जागा हुआ है नहीं, और अपने को जागा हुआ मान ले कि मैं जगा हुआ हूं, उसको जगाना बहुत मुश्किल है। जो मान ले में उसको बहुत कठिन काम होता है, ज्ञान है नहीं और ज्ञान मान ले में, जो अपनी धारणा है उसको ही सत्य मान ले में, कैसे समझाओगे? अज्ञ सुख माराध्य सुक्तर माराध्यत्य विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम नरंजयति। भर्तृहरि कहते हैं कि अज्ञानी को आसानी से समझाया जा सकता है, क्यों? वो अपने को अज्ञानी समझता है और चाहता है कि मैं भी कुछ जानूं, उसकी जिज्ञासा है, मैं अज्ञानी हूं पर वो जानना चाहता है, तो उसकी श्रद्धा के बल पर अज्ञानी को आसानी से समझाया जा सकता है। सूक्तर माराध्यत्य विशेषज्ञ, कभी कभी कोई ज्ञानी पुरुष है, जानता है लेकिन कहीं अटक गया, कहीं संदेह हो गया और वो लग रहा है कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, किसी से जाने, तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को तो इशारा कर दो, उससे भी वो समझ जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ उसने साधना किया है, समझ किया, मंथन किया है, स्वाध्याय किया है, आसानी से समझ जाएगा। लेकिन बीच का जो व्यक्ति है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम नरंजयति, जो अधूरे ज्ञान से जला हुआ व्यक्ति होता है, उसको तो कहते ब्रह्मा जी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति आग में जल जाए, न जिंदा है न मुर्दा, अधबीज का हो तो डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, क्या किया जाए, इसको कैसे जलाया जाए। तो वो तो आधा जला हुआ व्यक्ति की तरह होता है, ब्रह्मा भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जो अज्ञान में है और अज्ञान में होते हुए भी अपने को जागृत समझ रहा है, जानने वाला समझ रहा है, ऐसे देहात्म भाव में पड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उनको ये वेदांत समझना बहुत कठिन है। ये बोलते देहादि आत्मत्व विभ्रांतो जागृत्यम, देह आदि शरीर आदि में मैं पने की जो भ्रांति में पड़े हुए हैं, उसी में जाग रहे हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं फलाना हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं परिजनवान हूं। ये सब क्या है? देहादि आत्मभाव ही तो है, ये सब को शरीर को लेकर के ही सबके साथ में मैं पना हो रहा है, अभी स्वंग करके बैठा है। उस भ्रांति में जो जाग रहे हैं, ज्ञान तो है, चेतना तो है, पर उल्टी दिशा में है, जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान रहा है, उसमें जो जागे हुए भ्रांति में पड़े हुए लोग हैं, ऐसे पुरुष को हठात न ब्रह्मात्मत्व न विज्ञातुम क्षमते, एकाएक अचानक एक बार में आसानी से ब्रह्मात्मत्व न विज्ञातुम न क्षमते, उस न कोई अक्षमते के पले लगा दो, अनुभव बैठ जाएगा। कहते हैं एकाएक उस पुरुष को कि ब्रह्म ही तुम्हारी आत्मा है, इस रूप से विशेष बोध करवा पाना हो पाना कठिन है, न क्षमते, कारण मंदधित्वतः, उसकी जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि है। अगर तीक्ष्ण बुद्धि हो तो कटश्रुति कहती है दृश्यते त्वग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, अगर बुद्धि अभ्यास करते 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 इतनी तीक्ष्ण हो चुकी है, इतनी विशुद्ध हो चुकी है, तो दृश्यते सूक्ष्मदर्शी भी, उस तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा का आत्मत्वेन साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए कुशाग्र बुद्धि जो होता है, तीक्ष्ण बुद्धि होता है, विशुद्ध बुद्धि होता है, उसके लिए तो कठिन नहीं है, क्योंकि दोनों उपलब्ध है, प्रमाण भी उपलब्ध है और प्रमेय जिसको जाना जाता वो वस्तु भी सिद्ध है। तो एक बार उपदेश करने से भी खेडूत व्यक्ति की समाधि लग गई, इस प्रकार से हो सकता है तीक्ष्ण बुद्धि वाले के लिए। परंतु यहां पर प्रतिबंध है मंदधित्वतः है, क्योंकि वो मंद बुद्धि वाला है, बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है, इसलिए परेशानी होती है। अब इस प्रसंग को और आगे बढ़ाएंगे, पर कल ही देखेंगे, आपकी आवृत्ति में मेरा बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।